डॉक्टर डेव मैथ्यूसन, न्यू टेस्टामेंट साहित्य। व्याख्यान दो, यूनानीकरण। 2024 डेव मैथ्यूसन और टेड हिल्डेब्रांट। न्यू टेस्टामेंट हिस्ट्री एंड लिटरेचर, डॉक्टर डेविड मैथ्यूसन द्वारा। व्याख्यान दो, इतिहास और यूनानीकरण। ठीक है, चूंकि आप पहले से ही शांत हैं, तो हम आगे बढ़ेंगे और शुरू करेंगे, लेकिन आइए प्रार्थना के साथ शुरुआत करें और फिर हम नए नियम के बारे में बात करना शुरू करेंगे। और मैंने कहा कि मैं आज जो करना चाहता हूं वह इस सप्ताह के लिए है और शायद अगले सप्ताह का कुछ हिस्सा या अगले सप्ताह का अधिकांश भाग नए नियम के लिए मंच या संदर्भ तैयार करना है, यह स्वीकार करते हुए कि ऐतिहासिक, राजनीतिक रूप से कई कारक थे। न्यू टेस्टामेंट के पहले और उसके दौरान बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसने न्यू टेस्टामेंट के दस्तावेजों के लेखन को प्रभावित किया। इसलिए उन्हें पूरी तरह से समझने के लिए हमें थोड़ा रेखांकन करने की आवश्यकता है और इस बात की थोड़ी सी समझ होनी चाहिए कि जब न्यू टेस्टामेंट का निर्माण हुआ था उस समय तक और उसके दौरान क्या चल रहा था। फिर से यह समझना कि नया नियम शून्य में नहीं लिखा गया था। लेखक एक दिन नहीं बैठे और जैसा कि मैं एक बहुत छोटे लड़के के रूप में सोचता था, वे चमकने लगे और आत्मा से प्रेरित महसूस करने लगे और बस बैठ गए और इन दस्तावेजों को लिखना शुरू कर दिया। बल्कि इसके बजाय वे इस उतार चढ़ाव के हिस्से के रूप में लिख रहे थे और इन ऐतिहासिक एवं राजनीतिक एवं धार्मिक घटनाओं का प्रवाह जारी है। इसलिए नए नियम के दस्तावेजों में जाने से पहले हमें इसके बारे में थोड़ा समझने की जरूरत है, लेकिन आइए प्रार्थना से शुरुआत करें। पिता, हम आपको सोचने के लिए, दिमाग देने के लिए धन्यवाद देते हैं, विशेष रूप से आपके विचारों को सोचने के लिए, दिमाग देने के लिए, आपके विचार जो आपने हमें बताए हैं और जो हम कबूल करते हैं उसमें शामिल हैं, वे धर्म ग्रंथ हैं। आपका वचन जो बहुत विशिष्ट रूप से तैयार किए गए थे ऐतिहासिक परिस्थितियां और एक विशिष्ट समय और स्थिति में, भगवान हमें उसमें से कुछ को समझने में मदद करें ताकि हम आपके वचन के साथ और अधिक गहन मुठभेड़ कर सकें और अधिक स्पष्ट रूप से समझ सकें कि वह क्या है जो आप आज भी अपने लोगों के रूप में हमसे कहना चाहते हैं। यीशु के नाम पर हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। शुरुआत करने का पहला स्थान शायद न्यू टेस्टामेंट शब्द से हमारा मतलब है जब हम इस समूह या लेखों के संग्रह का उल्लेख करते हैं जिसे हम न्यू टेस्टामेंट कहते हैं। हमारा उससे क्या मतलब है? और इसका एक हिस्सा इस बात से संबंधित है कि जब आप और मैं टेस्टामेंट शब्द सुनते हैं तो आमतौर पर हमारे दिमाग में क्या आता है। इसका कारण यह है कि आज टेस्टामेंट शब्द का उपयोग काफी प्रतिबंधित संदर्भ में किया जाता है, इसलिए हम अपनी सामान्य रोजमर्रा की शब्दावली में इसका उपयोग अक्सर नहीं करते हैं, लेकिन जब आप इसका उपयोग करते हैं या इसका उपयोग सुनते हैं तो आमतौर पर आपके दिमाग में क्या आता है, क्या आप टेस्टामेंट शब्द के बारे में सोचते हैं? बाइबल एक चीज है, लेकिन सामान्य रोजमर्रा की भाषा में भी हम इसका उतनी बार उपयोग नहीं करते हैं, जिसके कारण हो सकता है कि आपको समस्याएं हो रही हो या आप में से कुछ लोग निश्चित रूप से नहीं जानते हों कि इसका उत्तर कैसे दिया जाए। बाइबल से जुड़ने के अलावा हम टेस्टामेंट शब्द का प्रयोग अक्सर किस संदर्भ में करते हैं? अदालत में गवाही की तरह एक वसीयतनामा आमतौर पर आज कानूनी संदर्भ में उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, जैसा कि मैंने यहाँ कहा, हम अक्सर अंतिम वसीयत और वसीयतनामा के बारे में सुनते हैं, इसलिए वसीयतनामा अक्सर एक कानूनी दस्तावेज होता है जो मेरी संपत्ति के वितरण को निर्धारित करता है, उदाहरण के लिए मेरे मरने के बाद, और इसलिए आपको अक्सर एक साथ रखने के लिए कहा जाता है वसीयत या वसीयतनामा। फिर यह वही है जो आप चाहते हैं कि इस जीवन से आपके जाने पर आपकी संपत्ति या सामान के साथ घटित हो, और कुछ लोगों ने इसे लागू करने का प्रयास किया है कि हम पुराने और नए नियम के शब्दों को कैसे समझते हैं। हालांकि मुझे लगता है कि हमें टेस्टामेंट शब्द के बारे में थोड़ा अलग तरीके से सोचने की जरूरत है, और वह पहला व्यक्ति है जिसने ओल्ड या न्यू टेस्टामेंट शब्द का उपयोग किया है, हालांकि उसने अंग्रेजी का उपयोग नहीं किया है। दरअसल ये लैटिन में था। पुराने और नए टेस्टामेंट का उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति टर्टुलियन नाम का एक व्यक्ति था, जो दूसरी शताब्दी के अंत में और तीसरी शताब्दी में रहता था। टर्टुलियन ने इस शब्द का उपयोग किया था। वह उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति था जिसके बारे में हम कम से कम जानते हैं। पुराने और नए टेस्टामेंट शब्द का उपयोग यह बताने के लिए किया जाता है कि दस्तावेजों के संग्रह को हम पुराना टेस्टामेंट कहते हैं और दस्तावेजों के संग्रह को हम न्यू टेस्टामेंट कहते हैं। अब टर्टुलियन, यह याद रखना महत्वपूर्ण है, टर्टुलियन एक व्यक्ति था जिसे हम अक्सर प्रारंभिक चर्च फादरों में से एक कहते हैं। आप मुझे कभी कभी चर्च फादर्स के बारे में बात करते हुए सुनेंगे। चर्च फादर व्यक्तियों का एक समूह है जो प्रेरितों और नए नियम के लेखकों के बाद शुरुआती चर्च नेता थे जिन्होंने लिखा था, और हमारे पास उनके कुछ दस्तावेज या संदर्भ हैं जो हमारे कुछ शुरुआती साहित्य में पाए जाते हैं, लेकिन मोटे तौर पर 200 से 400 ईस्वी के आसपास वह अवधि जब टर्टुलियन जैसे ये व्यक्ति रहते थे और उन्होंने लिखा था और अक्सर ऐसी बातें कहते थे जो न्यू टेस्टामेंट को समझने में हमारी मदद करने के लिए बहुत मूल्यवान हैं और उन्होंने इसे कैसे समझा, लेकिन टर्टुलियन उनमें से एक थे। न्यू टेस्टामेंट शीर्षक के साथ न्यू टेस्टामेंट का उल्लेख करने वाले पहले व्यक्ति। अब हालांकि टेस्टामेंट शब्द वास्तव में अंतिम वसीयत और टेस्टामेंट के हमारे कानूनी संदर्भ को संदर्भित नहीं करता है, बल्कि एक लैटिन शब्द टेस्टामेंटम से आया है जिसका अर्थ ग्रीक शब्द का अनुवाद करना था, जो इस तरह दिखता है। आपको इसे लिखने या पहचानने में सक्षम होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैंने इसे सिर्फ इसलिए लिखा है ताकि आप इसे देख सकें। लेकिन यह शब्द डायथेके, जिसका वास्तव में मतलब वाचा है, मुख्य रूप से नए टेस्टामेंट और पुराने टेस्टामेंट में एक वाचा को संदर्भित करने के लिए उपयोग किया जाता है। यदि आपके पास पहले से ही पुराने नियम का सर्वेक्षण है तो उम्मीद है कि आपने विभिन्न अनुबंधों के बारे में सीखा है। वह अनुबंध जो भगवान ने मूसा के साथ बनाया था, वह अनुबंध जो भगवान ने इब्राहिम डेविड के साथ बनाया था, एक अनुबंध एक समझौता है जिसे भगवान बनाता है, या एक रिश्ता जिसके साथ वह प्रवेश करता है उसकी प्रजा, उसके लोगों के साथ। इसलिए जब हम नए नियम के बारे में सोचते हैं तो हम मुख्य रूप से वाचा शब्द के संदर्भ में टेस्टामेंट शब्द के बारे में सोच रहे होते हैं। इसलिए नए नियम से हमारा तात्पर्य लेखों के एक समूह से है जो भगवान की नई वाचा की गवाही देता है। यीशु मसीह के माध्यम से अपने लोगों के साथ संबंध स्थापित किया। पुराना नियम समाप्त होता है। मैं उस शब्द के बारे में भी थोड़ी बात करना चाहता हूँ, विशेष रूप से पुराने और नए के बारे में, लेकिन पुराना नियम इस प्रत्याशा या उम्मीद के साथ समाप्त होता है कि एक दिन भगवान पुराने के विपरीत एक नई वाचा स्थापित करेंगे। जो वाचा उसने मूसा के अधीन स्थापित की थी, परमेश्वर अपने लोगों के साथ एक नई वाचा स्थापित करेगा। नया नियम आश्वस्त है कि यीशु मसीह के आगमन के साथ वह नई वाचा पहले ही स्थापित हो चुकी है, वह नई व्यवस्था जिसके तहत भगवान अपने लोगों के लिए मुक्ति प्रदान करता है, उस नई वाचा का उद्घाटन पहले ही यीशु मसीह के माध्यम से हो चुका है। इसलिए जब हम नए नियम के बारे में बात करते हैं तो हमारा मतलब लेखों के उस समूह से है जो यीशु मसीह के माध्यम से स्थापित और पूर्ण हुए उस नई वाचा के रिश्ते की गवाही देता है। इसलिए नए नियम से हमारा तात्पर्य परमेश्वर की अंतिम इच्छा और उसके लोगों के साथ दिए गए वसीयतनामा से नहीं है। हमारा मतलब उन लेखों से है जो वाचा की गवाही देते हैं, नई वाचा जिसका वादा पुराने नियम में किया गया था लेकिन अब मसीह में पूरा हो गया है। वे दस्तावेज जो ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से इसकी गवाही देते हैं और इसका प्रमाण देते हैं, वे लेख हैं जिन्हें हम नया नियम कहते हैं। अब इससे यह प्रश्न भी उठता है कि पुराने नियम में इतना पुराना क्या है, नए नियम में इतना नया क्या है, या क्या ये शब्द भी उपयुक्त हैं? एक तरह से वास्तव में पिछले कुछ वर्षों में अलग अलग शब्दावली खोजने पर जोर दिया गया है, क्योंकि पुराना और नया ऐसा लगता है। बाइबल के एक हिस्से को पुराना कहना एक अपमानजनक लेबल लगता है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह किसी ऐसी चीज का सुझाव दे रहा है जो घिसी पिटी है या पुराने जमाने की है या अब उपयोगी नहीं है या शायद इससे भी बदतर पहली जगह में एक गलती है जिसे किसी ऐसी चीज से ठीक करने की जरूरत है जो कहीं बेहतर है। इसलिए कभी कभी पुराने और नए अपने साथ नकारात्मक भाव और नए के लिए सकारात्मक भाव लेकर आ सकते हैं। कुछ लोगों ने सुझाव दिया है कि हमें इसे पहला और दूसरा टेस्टामेंट कहना चाहिए। पहला टेस्टामेंट वे किताबें हैं जिनका आप ओल्ड टेस्टामेंट सर्वे के तहत अध्ययन करते हैं, और यह बेहतर हो सकता है। मैं पुराने और नए टेस्टामेंट की शब्दावली पर कायम रहूंगा क्योंकि यह बहुत आम है और हम में से अधिकांश ने इसे उन्हीं शब्दों में सुना है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप स्पष्ट रहें। जब हम पुराने और नए टेस्टामेंट के बीच के संबंध को समझते हैं तो इसे नकारात्मक और सकारात्मक या निम्न और श्रेष्ठ या घिसे पिटे और बेहतर और अधिक हालिया के संदर्भ में नहीं समझा जाना चाहिए, बल्कि इसके बजाय यह होना चाहिए वादे और पूर्ति के संदर्भ में समझा गया। पुराने नियम को उस चरमोत्कर्ष और पूर्णता की आशा करने वाले के रूप में देखा जाता है जो अब यीशु मसीह के व्यक्तित्व में आता है। इसलिए नए नियम को ईश्वर के रहस्योद्घाटन की अंतिम पूर्ति और चरमोत्कर्ष के रूप में देखा जाना चाहिए जो पुराने नियम के लेखन में पहले से ही शुरू और प्रत्याशित था। उदाहरण के लिए पहले दो छंद आइए देखें। आपके नए नियम में इब्रानियों की पुस्तक के पहले दो छंद इस विचार को दर्शाते हैं जब यह कहता है, पुस्तक इस तरह से शुरू होती है, बहुत पहले भगवान ने हमारे पूर्वजों से कई और विभिन्न तरीकों से बात की थी भविष्यवक्ताओं द्वारा। तरीके पुरानी वाचा के धर्म ग्रंथों के तहत ईश्वर द्वारा खुद को प्रकट करने का एक संदर्भ, जब उन्होंने खुद को इसराइल के सामने प्रकट किया था। लेखों का वह समूह जो इसराइल के साथ पुरानी वाचा के तहत ईश्वर के स्वयं के रहस्योद्घाटन की गवाही देता है, जिस पर आपने पुराने नियम के सर्वेक्षण में ध्यान केंद्रित किया था। लेकिन फिर इब्रानियों ने आगे कहा और कहा, लेकिन इन अंतिम दिनों में, अंतिम दिन अब हैं, अब वह पूर्ति आ गई है, वे दिन, वह समय जिसकी ओर पुराने नियम ने संकेत किया था। अब इन अंतिम दिनों में परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हमसे बात की है। दूसरे शब्दों में अपने पुत्र यीशु मसीह के माध्यम से ईश्वर का रहस्योद्घाटन अपनी पूर्णता और चरमोत्कर्ष तक पहुंचता है। भगवान ने खुद को पुराने नियम के धर्म ग्रंथों में प्रकट किया, लेकिन इसका अंतिम चरमोत्कर्ष और पूर्णता भगवान में अब अपने नए वाचा के धर्म ग्रंथों, नए नियम में खुद को प्रकट करने में मिलती है। इसलिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि नए नियम को घटिया या उन्नत या अद्यतित के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए और पुराने को अप्रचलित और पुराने जमाने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसके बजाय यह केवल पूर्ति या वादा और पूर्ति का मामला है। पुराना नियम यह आशा करता है और वादा करता है कि एक दिन ईश्वर अंततः अपने लोगों के साथ अपना वाचा का संबंध स्थापित करेगा। अब जब यीशु मसीह दृश्य में आते हैं तो वह उस पूर्ति को लाते हैं और नए नियम के लेख यीशु मसीह के व्यक्तित्व में उस पूर्ति की गवाही देते हैं। आठ वसीयतनामा से हमारा तात्पर्य यही है। हमारा मतलब यही है, या कम से कम पुराने और नए नियम से मेरा यही मतलब है। फिर अंतिम वसीयत और वसीयतनामा नहीं बल्कि वाचा के संदर्भ में वसीयतनामा, भगवान की वाचा व्यवहार व्यवस्था समझौता, वह संबंध जो वह अपने लोगों के साथ बनाता है, वाचा से हमारा मतलब है। और फिर नई वाचा से हमारा तात्पर्य उन दस्तावेजों से है जो ईश्वर के स्वयं के रहस्योद्घाटन की गवाही देते हैं, यीशु मसीह के माध्यम से स्वयं के रहस्योद्घाटन की चरम पूर्णता की। और वे दस्तावेज जो इसकी गवाही देते हैं उन्हें हम नया नियम कहते हैं। ठीक है, अगली बात। ठीक है, सबसे पहले क्या इस बारे में कोई प्रश्न है कि हम टेस्टामेंट को कैसे समझते हैं, या टेस्टामेंट से मेरा क्या मतलब है, न्यू टेस्टामेंट से हमारा क्या मतलब है? उम्मीद है इनमें से कुछ आपके पुराने नियम सर्वेक्षण पाठ्यक्रम से परिचित होंगे, लेकिन मैं सिर्फ यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि हम समझें इसका क्या मतलब है। मैं सोचता था कि जब मैं आगे बढ़ता था, जब मुझे बाइबल के अध्ययन में दिलचस्पी हो जाती थी, तो मैं सोचता था कि क्योंकि मेरी दिलचस्पी न्यू टेस्टामेंट में थी, इसलिए मेरा काम आसान हो जाएगा। क्योंकि यदि आप पुराने और नए नियम को देखें, तो इसकी तुलना में नया नियम संपूर्ण बाइबल का एक बहुत छोटा हिस्सा है। हालांकि क्योंकि नया टेस्टामेंट पुराने टेस्टामेंट की पूर्ति और चरमोत्कर्ष है, मुझे जल्द ही पता चला कि मैं सिर्फ न्यू टेस्टामेंट के अलावा और भी बहुत कुछ के लिए जिम्मेदार हूँ, लेकिन मैं पुराने और नए के लिए भी जिम्मेदार हूँ। क्योंकि नया नियम पुराने को पूरा करने में इसे मानता है और इसकी समझ को मानता है। इसलिए अक्सर हम यह प्रदर्शित करने के लिए पुराने नियम की ओर लौटेंगे कि कैसे नए नियम के कुछ दस्तावेज पुराने नियम में पढ़ी गई बातों को मानते हैं और दिखाते हैं कि यह यीशु मसीह के व्यक्तित्व में कैसे पूरा होता है और चरमोत्कर्ष पर पहुंचता है। न्यू टेस्टामेंट के अवलोकन के माध्यम से कहने वाली दूसरी बात यह है कि न्यू टेस्टामेंट, और उम्मीद है कि आप में से अधिकांश के लिए, आप में से बहुत से लोगों ने कम से कम आम तौर पर इसे समझ लिया है, और वह न्यू टेस्टामेंट है। इसे मुख्य रूप से कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित नहीं किया गया है, बल्कि इसे तार्किक रूप से व्यवस्थित किया गया है। अर्थात मैथ्यू की पुस्तक पहली पुस्तक नहीं है जो न्यू टेस्टामेंट में लिखी गई थी। मेरी राय में उस गौरवपूर्ण स्थान का श्रेय या तो जेम्स को जाता है या एक थिस्सलुनिकियों को। हम उस बारे में बाद में बात करेंगे। मैथ्यू लिखी गई पहली पुस्तक नहीं थी। यह मार्क से पहले नहीं लिखा गया था। संभवतः यह रोमियो और पॉल द्वारा लिखी गई कई अन्य पुस्तकों से पहले भी नहीं लिखा गया था। इसके बजाय नया नियम कालानुक्रमिक की तुलना में तार्किक रूप से अधिक व्यवस्थित है। और फिर से मेरा मतलब है कि यह उस क्रम के अनुसार व्यवस्थित नहीं है जिसमें किताबें लिखी गई थीं। इसके बजाय नए नियम को एक साथ रखने के तरीके में एक तर्क है। यहां तक कि पॉल के पत्र, जो न्यू टेस्टामेंट का बड़ा हिस्सा हैं, उन्हें लंबाई के अनुसार अधिक व्यवस्थित किया जाता है। पूरी तरह से नहीं, लेकिन आम तौर पर पॉल के पत्रों को फिर से उस क्रम में नहीं जिस क्रम में उसने लिखा था, बल्कि मूल रूप से लंबाई के क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो रोमन पहला है। जब आप पॉल के पत्रों तक पहुंचते हैं, तो आप सबसे पहले रोमन पाते हैं, क्योंकि यह सबसे लंबा है। इसके बजाय फिर से नए नियम को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित किया गया है। ओह, वैसे यह सिर्फ एक प्राचीन यूनानी पांडुलिपि की तस्वीर है। यह मोटे तौर पर वैसा ही दिखेगा जैसा न्यू टेस्टामेंट के लेखकों ने वास्तव में लिखा होगा। आप में से कुछ लोग इसे ठीक से नहीं देख सकते। यह जॉन के सुसमाचार की शुरुआत है। वह जॉन एक है। यह एक प्राचीन पांडुलिपि है जो लगभग तीसरी या चौथी शताब्दी ईस्वी की है, इसलिए यह काफी पुरानी है। आप देखेंगे कि यदि आप इसे करीब से देख सकें, तो आप देखेंगे कि यह कॉलम में है, और कॉलम में कुछ नोटेशन हैं, जैसे पैराग्राफ, डिवीजन और अन्य चीजें। लेकिन आम तौर पर कुछ चीजें हैं जिन पर आप ध्यान देते हैं। प्राचीन नए नियम के पाठ के बारे में वास्तव में आप तीन बातें नोटिस करते हैं। मैं आपको यह दिखाने का एक कारण यह है कि यह आपके पास मौजूद नए नियम के अनुवादों की सराहना करता है। पहली बात तो यह कि इन पुरानी पांडुलिपियों में मूल पांडुलिपियां पूरी तरह से बड़े अक्षरों में लिखी गई होंगी। वे घसीटकर नहीं लिखते थे। इस बिंदु पर कोई छोटे अक्षर नहीं थे। कम से कम उनका उपयोग करना आम बात नहीं थी। और इसलिए यदि आप इसे ध्यान से देखें तो सब कुछ बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। यदि आपकी इसमें रुचि है तो इसे सीलबंद पांडुलिपि कहा जाता है, लेकिन वह किसी परीक्षण या किसी भी चीज में नहीं होगी। ये भी नहीं होगा। यह एक तरह से मुख्य रूप से आपकी रुचि जगाने के लिए है, लेकिन यह पूरी तरह से बड़े अक्षरों में लिखा गया है। इसके बारे में दूसरी बात जो आपने नोटिस की वह यह कि इसमें कोई शब्द विभाजन नहीं है। मुझे यकीन नहीं है कि ऐसा था या नहीं, शायद प्रोफेसर हिल्डेब्रांड हमें बता सकते हैं, लेकिन क्या वह जगह बचाने के लिए था या क्या यह वैसा ही था जैसा उन्होंने लिखा था? लेकिन शब्दों या अक्षरों के बीच कोई विभाजन नहीं था, सब कुछ यूं ही चल रहा था। तीसरी बात यह है कि वस्तुतः कोई विराम चिन्ह, कोई पूर्ण विराम, अल्पविराम या प्रश्न चिन्ह नहीं था। तो यह बस उस कार्य को प्रदर्शित करता है जो आपको अंग्रेजी अनुवाद प्रदान करने में किया गया था, क्योंकि कई बार उन्हें जिस चीज के साथ काम करना पड़ता है वह कुछ इस तरह दिखती है। लेकिन फिर भी यह एक बहुत पुरानी प्राचीन पांडुलिपि है जो जॉन के सुसमाचार की गवाही देती है। जैसा कि आप में से बहुत से लोग जानते हैं, हमारे पास जॉन का कोई मूल दस्तावेज नहीं है, हमारे पास इसकी कई प्रतियां हैं। यह बहुत पुराना और उच्च गुणवत्ता वाला है जो जॉन के लेखन की गवाही देता है। तो यह कुछ कुछ वैसा ही है जैसा नए नियम के दस्तावेज दिखते होंगे। लेकिन फिर नए नियम की व्यवस्था पर वापस आते हैं। सबसे पहले स्वाभाविक रूप से चार सुसमाचार मैथ्यू, मार्क, ल्यूक और जॉन दो कारणों से पहले आते हैं। नंबर एक, वे पुराने और नए टेस्टामेंट के बीच एक प्राकृतिक पुल प्रदान करते हैं। और दूसरा, इसका कारण यह है कि वे ईसाई धर्म के संस्थापक के जीवन से संबंधित हैं, जो कि यीशु मसीह का व्यक्तित्व है, जो पुराने नियम की सभी अपेक्षाओं और वादों को पूरा करता है। इसलिए क्योंकि गॉस्पेल का मुख्य विषय और सामग्री यीशु मसीह है, और तथ्य यह है कि गॉस्पेल पुराने और नए नियम के बीच एक प्राकृतिक पुल प्रदान करते हैं, वे तार्किक रूप से पहले आते हैं, भले ही उनमें से कुछ अन्य दस्तावेजों की तुलना में बाद में लिखे गए हों। इसलिए मैथ्यू, मार्क, ल्यूक और जॉन तार्किक और स्वाभाविक रूप से हमारे नए नियम में पहले आते हैं। अधिनियमों की पुस्तक तार्किक रूप से इस अर्थ में आगे आती है कि यह दर्शाती है कि कैसे यह यीशु आंदोलन, कैसे यह आंदोलन जिसे हम ईसाइयत कहते हैं, यीशु द्वारा शुरू किया गया था, अब यरूशलम और यहूदिया की संकीर्ण सीमाओं से परे फैलना शुरू कर देता है और अंततः बड़े ग्रीक भाषी दुनिया को गले लगा लेता है। पहली सदी। इसलिए एड्स फिर से एक प्राकृतिक प्रकार का निष्कर्ष है या तार्किक रूप से आता है और स्वाभाविक रूप से सुसमाचार के बाद आता है। और फिर यह संबंधित है कि कैसे गॉस्पेल की घटनाएं और यीशु के मंत्रालय, उनके जीवन और उनकी मृत्यु के आसपास की घटनाएं कैसे फैलनी शुरू हुई और यरूशलम और उसकी संकीर्ण सीमाओं से कहीं अधिक दूर तक इस क्षेत्र को प्रभावित करने लगी। फिलिस्तीन। आखिरकार इसने पहली सदी के संपूर्ण बसे हुए विश्व को कैसे अपने आगोश में ले लिया। आप यह भी देख सकते हैं कि अधिनियमों में न्यू टेस्टामेंट कितना तार्किक है। हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे जब हम इन पुस्तकों तक पहुंचेंगे, लेकिन गॉस्पेल में से एक तीसरा गॉस्पेल ल्यूक, जैसा कि आप में से कुछ शायद जानते हैं, वास्तव में इसका हिस्सा था अधिनियमों के साथ दो खंड का कार्य। ल्यूक और एक्ट्स मूल रूप से दो खंड थे जो एक साथ थे, लेकिन तार्किक रूप से उन्हें अलग कर दिया गया है ताकि ल्यूक फिर अन्य पुस्तकों के साथ चला जाए जो मैथ्यू, मार्क और जॉन से मिलती जुलती हैं, और फिर एड्स वर्णन करने में एक प्राकृतिक प्रकार का संक्रमण प्रदान करता है। गॉस्पेल की घटनाएं अब कैसे व्यापक दुनिया में फैलने और प्रभावी होने लगती हैं? अब अधिनियमों की पुस्तक आपको आरंभिक चर्च के प्रसार के बारे में कुछ बहुत ही एक कथा के रूप में एक ऐतिहासिक कथा से परिचित कराती है। अधिनियमों का सुसमाचार आपको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पात्रों, बहुत महत्वपूर्ण प्रारंभिक ईसाई नेताओं से परिचित कराता है, पीटर और जेम्स की तरह, और उनमें से एक आदमी है, एक परिवर्तित फरीसी, वास्तव में पहली सदी का एक परिवर्तित आतंकवादी, जो ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गया है, जिसका नाम शाउल था और उसका नाम पॉल हो गया, और वह इसके बड़े हिस्से के लिए जिम्मेदार है नया नियम। इसलिए यह स्वाभाविक है कि अधिनियमों में प्रमुख भूमिका निभाने वाले पात्रों में से एक तब भूमिका निभाएगा, उसके पत्र नए नियम के अगले भाग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए प्रेरितों के काम के बाद हमें प्रेरितों के काम की किताब में मुख्य पात्रों में से एक के पत्र, पॉल के पत्र मिलते हैं, जो रोमियों से शुरू होते हैं और फिलेमोन नामक एक छोटी सी किताब तक जाते हैं। पॉल के पत्र पत्रों का एक समूह है, जिन्हें अक्सर सामान्य पत्र या सामान्य पत्र कहा जाता है, जो तब अन्य महान ईसाई नेताओं के पत्रों से संबंधित होते हैं, जिन्हें अधिनियम की पुस्तक में पेश किया गया था, जैसे कि पीटर और जेम्स को अन्य मुख्य हस्तियों से परिचित कराया गया था। अधिनियम और हम उनके पत्रों को पॉल के बाद नए नियम में भी शामिल पाते हैं। और फिर अंत में रहस्योद्घाटन की पुस्तक, जो हो सकती है, संभवतः कई कारण हैं कि यह नए नियम के अंत में क्यों है, लेकिन तार्किक रूप से यह निश्चित रूप से उस पुस्तक के रूप में फिट बैठती है जो इतिहास के चरमोत्कर्ष या लक्ष्य से संबंधित है, चरमोत्कर्ष का संपूर्ण ब्रह्मांड को बचाने की ईश्वर की मुक्तिदायी योजना में। रहस्योद्घाटन नए नियम के अंत में एक उपयुक्त भूमिका निभाता है। रहस्योद्घाटन दूसरी पुस्तक जॉन का सुसमाचार हो सकती है, लेकिन या तो जॉन का सुसमाचार या रहस्योद्घाटन संभवतः न्यू टेस्टामेंट की सबसे आखिरी पुस्तक होने का दावा करेगा, जो पहली शताब्दी के अंत के बहुत करीब लिखी गई थी। लेकिन फिर जैसा कि आप देख सकते हैं, नए नियम की व्यवस्था के तरीके में एक तर्क है। इसे उस क्रम के अनुसार व्यवस्थित नहीं किया गया है जिसमें किताब लिखी गई है, लेकिन जिस तरह से इसे एक साथ रखा गया है उसमें एक प्रकार का तर्क प्रकट होता है। ठीक है, चलिए थोड़ी बात करते हैं। अच्छा, यह सब कैसे हुआ? नए नियम के लेखन से पहले और उसके दौरान क्या चल रहा था? जैसा कि हमने कहा, नया नियम यूं ही नहीं था, यह यूं ही शून्य से उत्पन्न नहीं हुआ था, नहीं इसे बनाया गया था, नहीं बनाया गया था। यह निश्चित रूप से आसान होता अगर भगवान ने आकाश से बस एक सूची गिरा दी होती कि यह क्या है, जैसा वह चाहता था लोगों के बारे में सोचने और विश्वास करने के लिए। लेकिन इसके बजाय भगवान ने खुद को बहुत ऐतिहासिक घटनाओं और परिस्थितियों के माध्यम से एक बहुत ही विशिष्ट संस्कृति और स्थान में और एक बहुत ही विशिष्ट भाषा में प्रकट करना चुना, और इसलिए इससे हमें इसके बारे में थोड़ा समझने में मदद मिलेगी, या मुझे लगता है कि न्यू टेस्टामेंट को और अधिक समझने में मदद मिलेगी अगर हम उस स्थिति और परिस्थितियों के बारे में थोड़ा समझ लें जिसने इसे उत्पन्न किया। और फिर इस बिंदु पर मैं केवल व्यापक ब्रशस्ट्रोक चित्रित करना चाहता हूँ। कम से कम मेरे लिए, मुझे न्यू टेस्टामेंट समय, ग्रीको-रोमन दुनिया और उस समय की यहूदी दुनिया का इतिहास बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन मुझे एहसास है कि आप में से बहुत से लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं मुख्य रूप से बताना या चित्रित करना चाहता हूँ बहुत व्यापक ब्रशस्ट्रोक। राजनीतिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक रूप से क्या चल रहा था? मुख्य और प्रमुख आंदोलन या घटनाएं या विशेषताएं क्या थीं जो पृष्ठभूमि प्रदान करती थीं? और मुझे लगता है कि नए नियम को और अधिक गहराई से समझने के लिए यह आवश्यक है कि आप समझें। सबसे पहले राजनीतिक माहौल पर नजर डालते हैं। न्यू टेस्टामेंट के समय तक और इसमें राजनीतिक रूप से क्या चल रहा था? पुनः आपके नोट्स में जो मेरे पास ब्लैकबोर्ड पर हैं, मैंने फिर से बहुत व्यापक ब्रशस्ट्रोक में कई प्रमुख विशेषताओं को सूचीबद्ध किया है। राजनीतिक माहौल को समझने का पहला प्रारंभिक बिंदु एक महान सेनापति के उद्भव को समझना है, और इससे मेरे मन में सिकंदर महान नाम का एक व्यक्ति आता है, और उन्होंने वास्तव में खोज की। पुरातात्विक खुदाई से वास्तव में पता चला कि उनके पास कोडक कैमरे थे, और यह बिल्कुल वैसा ही दिखता था। वहां सिकंदर महान है। कौन जानता है कि वह कैसा दिखता था, लेकिन जो भी हो, यह सिकंदर महान की एक प्रतिमा और आकृति है। सिकंदर महान को लगभग 336 ईसा पूर्व में शुरू करने के लिए जाना जाता है, इसलिए हम ईसा मसीह के जन्म और इतिहास के परिदृश्य पर उभरने से लगभग 330 साल पहले हैं। तो उससे लगभग 330 साल पहले सिकंदर महान नाम के एक व्यक्ति ने अपने पिता के राज्य पर कब्जा कर लिया था, और लगभग 10 वर्ष की अवधि में सिकंदर ने दुनिया में तूफान मचा दिया, और वह वास्तव में अपने पिता के राज्य का विस्तार करता है। सिकंदर महान ने उस राज्य का विस्तार ऐसे क्षेत्र तक किया जो पहले ज्ञात किसी भी चीज से बड़ा था। तो सिकंदर महान उस समय के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक है। यह आपको दिखाता है, यह सबसे अच्छा चार्ट नहीं है, लेकिन यह होगा, जेरूसलम ठीक यहीं जैसा होगा। यह भूमध्य सागर है, यहां यरूशलेम है, यह आधुनिक तुर्की एशिया माइनर है, यहां ग्रीस में रोम और इटली यहीं होंगे, यहां नीचे मिस्र है, तो आपको तस्वीर मिल जाएगी। यह बिंदीदार रेखा आपको मोटे तौर पर सिकंदर के साम्राज्य की सीमा दिखाती है, जो उस समय काफी महत्वपूर्ण थी। और एक बात आपने नोटिस की है कि फिलिस्तीन की भूमि यरूशलेम वह क्षेत्र सिकंदर महान के शासनकाल के अंतर्गत आता है, इसलिए वह इस बड़े सैन्य अभियान पर निकले और एक राज्य पर विजय प्राप्त की और अपने राज्य का विस्तार उससे भी आगे किया जितना उनके पिता ने किया था। सिकंदर एक शानदार सैन्य रणनीतिकार के रूप में जाना जाता था। अलेक्जेंडर ने एक काम किया जो बहुत महत्वपूर्ण था, और आपको इस शब्द को जानने की आवश्यकता है, और जिस शब्द को आपको जानने की आवश्यकता है वह हेलेनाइजेशन है। हेलिना रुको हेलेनाइजेशन, यूनानीकरण। यूनानीकरण का तात्पर्य ग्रीक भाषा और संस्कृति के प्रसार से है, और सिकंदर ने यही किया था। फिर यह ग्रीक शब्द हेल्स से आया है, जिसका अर्थ ग्रीक है, और हेलेनाइजेशन ग्रीक भाषा और संस्कृति के विस्तार और प्रसार को संदर्भित करता है। तो इस पूरे साम्राज्य में इसे एकजुट करने का एक तरीका पूरे साम्राज्य में ग्रीक संस्कृति, धर्म और ग्रीक भाषा का प्रसार करना था। तो वस्तुतः यरूशलेम और परमेश्वर के लोगों, यहूदियों के घर सहित कुछ भी यूनानीकरण के प्रभाव से बच नहीं पाया। उस दौरान यूनानी संस्कृति और यूनानी भाषा के प्रभाव से कुछ भी नहीं बचा। वास्तव में इसके निहितार्थों में से एक यह है कि इसके बहुत अधिक समय बाद पुराने नियम का सेप्टुआजेंट नामक अनुवाद नहीं हुआ। यह मूल रूप से पुराने नियम का ग्रीक अनुवाद है, और मुख्य कारणों में से एक यह था कि जितने अधिक लोग ग्रीक बोलते थे, पुराने नियम के ग्रीक अनुवाद की उतनी ही अधिक आवश्यकता थी। जैसा कि आप जानते हैं, उम्मीद है कि पुराने नियम की कक्षा से, पुराना वसीयतनामा मूल रूप से हिब्रू में लिखा गया था, अरामी भाषा के कुछ खंड, लेकिन हेलेनिज्म और ग्रीक भाषा और संस्कृति के प्रसार के साथ अंतः ग्रीक अनुवाद की भी आवश्यकता थी। कम से कम यही इसके कारण का एक हिस्सा है। तो अलेक्जेंडर को एक साम्राज्य फैलाने के लिए जाना जाता है, फिर से एक भव्य साम्राज्य, सबसे बड़ा, वास्तव में उदाहरण के लिए फारसी साम्राज्य जिसके तहत यहूदियों ने खुद को पाया, आप इसे डैनियल और ओल्ड टेस्टामेंट जैसी किताब में पाते हैं, आदि। अब सिकंदर की मृत्यु के बाद सिकंदर फिर से इस भव्य साम्राज्य का निर्माण करता है। अपनी मृत्यु के बाद सिकंदर के पास अपने साम्राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं था या उसे इसकी वसीयत करने या देने के लिए कोई नहीं था, और इसलिए सिकंदर की मृत्यु के समय फिर से हम अभी भी ईसा से लगभग 320 वर्ष पहले थे, मोटे तौर पर ईसा मसीह के परिदृश्य में आने से पहले। इस दौरान सिकंदर की मृत्यु के बाद मूल रूप से उसके कुछ सेनापतियों के बीच संघर्ष छिड़ गया। उदाहरण के लिए, इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा? मूल रूप से यह दो समूहों या दो जनरलों के बीच सत्ता के लिए संघर्ष तक सीमित है, और इसे सेल्यूसिड्स और टॉलेमीज के रूप में जाना जाता है। सेल्यूसिड्स, क्या यह इतना आसान है? आपको बस इतना जानने की जरूरत है, मैं फिर से चीजों को सरल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सेल्यूसिड्स वह समूह होगा जो सीरिया की भूमि में यरूशलेम के उत्तर में रहता था। तो फिर से अगर मैं इस मानचित्र पर वापस जा सकता हूँ तो आप यहाँ सीरिया देखेंगे, यह सेल्यूसिड्स का क्षेत्र होगा। टॉलेमीज अगला समूह मिस्र में नीचे दक्षिण में है। तो इस स्लाइड पर वापस जाने के लिए आपके पास सीरिया में उत्तर में, यरूशलेम के उत्तर में, फिलिस्तीन की भूमि में सेल्यूसिड्स हैं, और फिर आपके पास मिस्र में दक्षिण में टॉलेमीज हैं। अब कुछ समय के लिए इसराइली, और याद रखें परमेश्वर के लोग इसराइली, ऐसा प्रतीत होता है जैसे उन्होंने खुद को एक के बाद एक युग में विदेशी शासन और शासन के अधीन पाया, और यह भी अलग नहीं है। अब जब सिकंदर मर गया, अब वे खुद को सबसे पहले मिस्र में टॉलेमीज के शासन के अधीन पाते हैं। फिर ये आज की दो शक्तियां हैं, टॉलेमीज और सेल्यूसिड्स। तो सबसे पहले इज़राइल खुद को मिस्र के टॉलेमीज के शासन के अधीन पाता है। अब यह आम तौर पर एक अच्छा अनुभव था। इज़राइल ने काफी हद तक शांति का आनंद लिया, और आप जानते हैं टॉलेमिक शासन के तहत उनके लिए जीवन जीना काफी आसान नहीं था। हालांकि बाद में सत्ता सेल्यूसिड्स के पास स्थानांतरित हो गई, और सेल्यूसिड शासन के तहत चीजें इतनी आसान नहीं थीं, इसलिए इज़राइल उत्तर और दक्षिण के बीच में था और खुद को अब आगे और पीछे फेंक दिया हुआ पाया। तो अब वे सेल्यूसिड्स के शासन के अधीन हैं, जो न तो इतना शांतिपूर्ण था और न ही इतना अच्छा अनुभव था। हालांकि सेल्यूसिड शासन के तहत यह चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। फिर सेल्यूसिड्स ने इसराइलियों के साथ इतना अच्छा व्यवहार नहीं किया, और विशेष रूप से शासकों में से एक व्यक्ति जिसे हम एंटियोकस एपिफेन्स फोर कहते हैं। उन्होंने आपकी किताबों में या आपके नोट में एंटियोकस एपिफेन्स के तहत संकट का उल्लेख किया है। लगभग 175 से 63 ईसा पूर्व की अवधि में एंटियोकस एपिफेन्स और सेल्यूसिड्स ने शासन किया। एंटियोकस एपिफेन्स एक बार फिर सेल्यूसिड्स में से एक है जो यरूशलेम में जाने के लिए जाना जाता है। एक बार वह अंदर गया और मूल रूप से मंदिर को लूट लिया, सारा सोना और सारी संपत्ति ले ली, और वास्तव में कई यहूदियों को मार डाला। और फिर बाद में वह फिर वापस गया, और यहीं पर उसने मंदिर को पूरी तरह से नष्ट और अपवित्र कर दिया। इसलिए वह अंदर गया और जैसा कि किंवदंती है, मंदिर को नष्ट कर दिया। उसने वेदी पर एक सुअर का वध किया। उसने इसराइल के देवता के मंदिर को अपवित्र करते हुए ग्रीक देवता ज़ियूस के अनुसार मंदिर का नाम बदल दिया और सब कुछ नष्ट कर दिया। और फिर वह इसराइल पर सेल्यूसिड शासन का चरम या चरमोत्कर्ष था। अब यह कुछ समय तक चलता रहा। फिर से मैं इस बिंदु पर तारीखों या उस जैसी किसी चीज के बारे में वास्तव में सटीक नहीं हो पाऊंगा, लेकिन यह कुछ समय तक चलता रहा जब तक कि जुडास मैकाबीज नाम का एक व्यक्ति नहीं आया। आप देख सकते हैं आपके नोट्स में मैकाबीन के संदर्भ में, एक महायाजक के बेटे जुडास मैकाबीस ने सेल्यूसिड्स को यरूशलेम से बाहर निकालने की कोशिश करने के लिए उनके खिलाफ विद्रोह की एक श्रृंखला का नेतृत्व किया। फिर तुम्हें याद रखना होगा कि ये परमेश्वर के लोग यहूदी हैं, और यह उनका मंदिर है जहां परमेश्वर उनके साथ रहते हैं। यह एक पवित्र स्थान है, यह पवित्र नगरी है। और अब तुम्हारे पास परदेशियों का एक समूह है जो उसमें आ गए हैं और उसे अपवित्र कर दिया है। उन्होंने इसे लूट लिया है, उन्होंने इसका नाम एक विदेशी मूर्ति पूजक देवता के नाम पर रखकर इसे अपवित्र कर दिया है। और अब जुडास मैकाबीस मंदिर को सेल्यूसिड से मुक्त करने के लिए एक प्रकार का प्रयास कर रहा है, और वह ऐसा ही करने में सक्षम था। जुडास मैकाबीस और उनके समूह ने अंतः यरूशलेम और मंदिर को सेल्यूसिड्स के नियंत्रण से मुक्त कर दिया। बहुत ही कम समय के लिए, लगभग 80 वर्षों तक, इसराइल ने विदेशी उत्पीड़न और विदेशी शासन से स्वतंत्रता का आनंद लिया। यह तब तक है जब तक कि अगली प्रमुख विश्व शक्ति का उदय न हो जाए। हम उनके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन जुडास मैकाबीस के बारे में दूसरी बात जो आप शायद जानते हैं वह है, जुडास मैकाबीस उनके मंदिर को मुक्त कराने पर यहूदियों ने मंदिर को फिर से समर्पित किया और वास्तव में समर्पण का एक समारोह स्थापित किया जिसे यहूदी आज भी मनाते हैं, जो कि क्या है? हाँ, हनुक्का वह त्योहार है जो स्वतंत्रता और मंदिर के पुनर्समर्पण और पुनरुद्धार का जश्न मनाता है, और उस दौरान जो कुछ हुआ उसके बारे में एक किंवदंती और परंपरा है। तो अब 80 वर्षों तक, लगभग 80 वर्षों तक, इसराइल को अगले साम्राज्य तक कुछ हद तक स्वतंत्रता प्राप्त है। और आपके नोट्स में अगला उभरता हुआ विश्व साम्राज्य रोमन था। इस पूरे समय के दौरान, इस समय के अधिकांश समय के दौरान, रोम वास्तव में शुरुआत कर रहा था। वे क्षितिज पर मंडरा रहे थे, और 63 ईसा पूर्व में, मुझे खेद है, 63, तब अगली विश्व शक्ति सत्ता संभालती है, और वह रोमन है। और वास्तव में नए नियम के शेष समय में और आने वाले कुछ समय के लिए इसराइल स्वयं को रोमनों के शासन के अधीन पाएगा। इसलिए संपूर्ण नया नियम रोमन शासन के अधीन स्थानों में रहने वाले परमेश्वर के लोगों के लिए लिखा गया है। तो रोम, यह उभरती हुई विश्व शक्ति, वास्तव में अपने साम्राज्य का और भी अधिक विस्तार करना शुरू कर देती है। आप देखेंगे कि यह लाल रेखा पहली शताब्दी में रोमन शासन की सीमा को दर्शाती है। पुनः यदि आप यहाँ पर अपना प्रभाव स्पष्ट करना चाहते हैं, तो यरूशलेम ठीक यही होगा। यहाँ आधुनिक तुर्की, एशिया माइनर और ग्रीस है, वहां इटली और रोम है, स्पेन नीचे मिस्र में, और इसलिए यह लाल रेखा, आप इसकी सीमा को लगभग आधुनिक इंग्लैंड, स्कॉटलैंड तक पहुंचते हुए देख सकते हैं। पहली शताब्दी के अंत तक रोमन शासन की सीमा उनके द्वारा पहले अनुभव की गई किसी भी चीज से भिन्न थी। तो एक बार फिर इस क्षेत्र में रहने वाला कोई भी व्यक्ति, वस्तुतः कोई भी, रोमन शासन के प्रभाव से बच नहीं पाया, जिसमें यरूशलेम और फिलिस्तीन, भगवान के लोगों की भूमि भी शामिल है। और हम देखना शुरू करेंगे, विशेष रूप से पॉल के पत्रों के साथ, लगभग सभी पत्र जिन्हें वह संबोधित करता है उनमें से अधिकांश आधुनिक एशिया माइनर के शहरों को संबोधित करते हैं, जो एक तरह से रोमन शासन का केंद्र है, रोमन शासन के केंद्रों में से एक है नियम। इसलिए कहीं भी परमेश्वर के लोग रोमन शासन से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते थे। अब उन चीजों में से एक जो रोमनों ने की, और फिर मैं इसके साथ बहुत बहुत सरल होने की कोशिश कर रहा हूँ, इतने बड़े क्षेत्र का प्रशासन करने के लिए उन्होंने जो काम किए उनमें से एक यहाँ रोम है। इतने बड़े क्षेत्र का प्रशासन करने के लिए रोम ने इसे प्रांतों में विभाजित किया, और उन विभिन्न प्रांतों पर शासन करने या शासन करने के विभिन्न तरीके थे, और जिन तरीकों से वे ऐसा कर सकते थे उनमें से एक तरीके से उन्होंने कुछ प्रांतों पर शासन किया जिसे ग्राहक राजा कहा जाता था। यानी ऐसा लगता है कि रोम इस बात पर निर्भर करता है कि वे कितनी आसानी से ऐसा करने में सक्षम थे, या कितनी आसानी से लोग रोमन शासन के आगे झुक गए या उसके अधीन हो गए, कभी-कभी यह प्रभावित हुआ कि रोम ने उस पर कैसे शासन किया। इसलिए यदि उनके राज्य के एक निश्चित क्षेत्र में उन्होंने विरोध किया और लड़ाई की, तो जाहिर तौर पर रोम कड़े कदम उठाने जा रहा था। हालांकि अन्य क्षेत्रों में जो अधिक शांत और आसानी से आ सकते थे, कभी कभी उन्हें अपने देश पर देशी शासकों को नियुक्त करने की अनुमति दी गई थी, जब तक कि वे रोम के साथ अनुपालन करते थे। उन्हें थोड़ी अधिक छूट थी। इन्हें अक्सर ग्राहक राजा कहा जाता था। हम थोड़ी देर में उन ग्राहक राजाओं में से एक के बारे में बात करेंगे, लेकिन जहां तक रोमन शासन के प्रभाव का सवाल है, तो मैं तीन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। और वैसे पहली शताब्दी में अधिकांश लोगों ने, उनमें से बहुत से, रोमन शासन को एक अच्छी चीज के रूप में देखा होगा। लेकिन रोमन शासन के कुछ प्रभाव क्या थे? सबसे पहले, अब एक सामान्य भाषा थी जो पूरे साम्राज्य को एकजुट करती थी। इसमें शामिल होगा, मैं एक तरह से सिकंदर महान तक भी पहुंच रहा हूं, लेकिन अब सिकंदर महान के शोषण के साथ और अब रोमन शासन के साथ एक आम भाषा है जो पूरे साम्राज्य को एकजुट करती है, और वह ग्रीक है। बहुत सारे लोग उस समय के बहुत से लोग त्रिभाषी रहे होंगे, शायद लैटिन और ग्रीक बोलते होंगे, और कम से कम यहूदियों के लिए उनमें से बहुत से लोग हिब्रू, ग्रीक और अरामी भाषा बोलते होंगे। मुझे लगता है कि यीशु संभवतः त्रिभाषी थे। वह संभवतः हिब्रू, अरामी और ग्रीक भी बोलता था। लेकिन सिकंदर के साम्राज्य और उसके बाद रोमन साम्राज्य के प्रसार के साथ अब पूरा साम्राज्य एक आम भाषा से एकजुट हो गया था। वह रोजमर्रा के व्यापार और रोजमर्रा की बातचीत की भाषा है, और वह ग्रीक थी। इसका दूसरा उत्पाद, विशेष रूप से रोमन शासन के प्रसार की यह घटना, जिसे कुछ लोग पैक्स रोमाना कहते हैं, या वह रोम की शांति है। दूसरे शब्दों में, रोम, जब तक आप रोमन शासन का अनुपालन करते हैं, रोम लाभों में से एक यह था कि रोम ने आपको स्वतंत्रता और शांति और संघर्ष और युद्ध से मुक्ति का वादा किया था। इसलिए पहली शताब्दी में रोम के अनुपालन में बहुत कुछ दांव पर था, और आपके अनुपालन के बदले में रोम शांति, सुरक्षा, युद्ध की अनुपस्थिति के लाभ प्रदान करेगा। तीसरी चीज थी उन्नत परिवहन व्यवस्था और संचार। रोमन शासन के प्रसार के साथ अब संचार और परिवहन उस तरह से संभव हो गया जैसा पहले नहीं था। तो ये तीन फायदे हैं। मुझे नहीं लगता कि हम इस बारे में बहुत अधिक बात कर सकते हैं कि यह नए नियम के कुछ हिस्सों को समझने के हमारे तरीके को कैसे प्रभावित कर सकता है, और शायद हम तब करेंगे जब हम नए नियम के कुछ दस्तावेजों को देखेंगे। लेकिन मैं उन तीन को रोमन शासन के लाभों के रूप में उजागर करना चाहता हूँ। एक आम भाषा अब साम्राज्य को एकजुट करती है, पैक्स रोमाना, शांति का वादा, युद्ध की अनुपस्थिति यदि आप अनुपालन करते हैं, तो रोमन शासन के तहत सुरक्षा, और फिर अंतः रोमन साम्राज्य के परिणामस्वरूप उन्नत परिवहन और संचार। अब मैंने कहा कि रोम अपने विशाल क्षेत्रों और प्रांतों पर जिन तरीकों से शासन करता था, उनमें से एक तरीका ग्राहक राजाओं के माध्यम से था। यानी फिर से, विशेष रूप से राज्य के कुछ वर्गों के लिए। जब रोम ने अपना शासन फैलाना शुरू किया और विभिन्न देशों और भौगोलिक स्थानों पर कब्जा करना शुरू किया, तो यदि वे चुपचाप आते थे और लड़ाई नहीं करते थे, और अन्य परिस्थितियों के आधार पर उन्हें अक्सर रोमन शासन की अनुमति के तहत अनुमति दी जाती थी, जब तक यह रोमन नियम का अनुपालन करता है, उन्हें अपना शासक नियुक्त करने की अनुमति होगी। और उन ग्राहक राजाओं में से एक, जिसे मैंने आपके नोट में क्रूर राजा के रूप में संदर्भित किया है, उस व्यक्ति का नाम हेरोदेस महान था। आपने हेरोदेस महान के बारे में पढ़ा। आपने हेरोदेस के बारे में पढ़ा कि वह राजा था जिसने वास्तव में यीशु के जन्म से पहले की घटनाओं के दौरान फिलिस्तीन की भूमि पर शासन किया था। हेरोदेस एक ग्राहक राजा था जिसने फिर से यीशु मसीह के जन्म के दौरान यहूदिया पर शासन किया था। आपने सुसमाचार में उसके बारे में पढ़ा। और हेरोदेस जाना जाता था। हेरोदेस उन व्यक्तियों में से एक था जो एक क्रूर राजा होने के कारण, जैसा कि नाम से पता चलता है, जाना जाता था। हेरोदेस उन व्यक्तियों में से एक था जिसे एक प्रकार का वाको कहा जाता था। जब आप उनके और अन्य प्राचीन लेखकों के बारे में कहानियां पढ़ते हैं, तो कहानियां गॉस्पेल में उनके बारे में जो कुछ भी हम जानते हैं उसके अनुरूप होती हैं। एक कहानी यह है कि हेरोदेस लोगों को मौत के घाट उतारने के लिए काफी इच्छुक था, भले ही उसे, चाहे वे उसके कितने ही करीबी क्यों न हों, अगर उसे संदेह होता कि वे उसके सिंहासन के लिए खतरा हैं, तो वह उन्हें मौत के घाट उतार देता। एक कहानी यह है कि एक बार हेरोदेस को अपने ही साथियों के समूह में किसी के बारे में पता चला। उसे पता चला कि यह व्यक्ति उसके सिंहासन पर कब्जा करने की कोशिश करने वाला है। इसलिए हेरोदेस ने एक रात पूल पार्टी रखी और इन सभी लोगों को आमंत्रित किया। और इतने सारे लोगों के साथ उसने अपने कुछ आदमियों से इस आदमी को तालाब में डुबा दिया, जब कोई नहीं देख रहा था, क्योंकि उसे संदेह था कि वह उसकी गद्दी छीनने वाला है। तो मैथ्यू 2 में हेरोदेस की हरकतें वास्तव में चरित्र से बाहर नहीं हैं। जब हम हेरोदेस के बारे में पढ़ते हैं कि उसने यरूशलेम या बेथलेहम में 2 साल और उससे कम उम्र के सभी बच्चों को मौत के घाट उतार दिया, जो उस समय बेथलेहम के आकार को देखते हुए अभी भी बहुत अधिक नहीं होंगे, शायद 1 दर्जन से कम, लेकिन ये कार्य हम हेरोदेस के बारे में अन्यत्र जो जानते हैं उससे बाहर नहीं है। हेरोदेस यहूदी लोगों पर भारी कराधान के लिए जाना जाता था और मुख्य रूप से अपनी निर्माण परियोजनाओं, जैसे कि यरूशलेम में बनाए गए मंदिर को वित्त पोषित करने के लिए जाना जाता था। तो हेरोदेस उन ग्राहक राजाओं में से एक था जिन्होंने रोमन शासन के समय यहूदिया पर शासन किया था। यह कुछ कारणों से परमेश्वर के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण समय था। सबसे पहले रोमन शासन के प्रसार के साथ कुछ दिलचस्प चीजें चल रही थीं। नंबर 1 यह है कि जब तक पहली शताब्दी में ईसाइयों को यहूदी धर्म के एक और संस्करण के रूप में देखा जा सकता था, तब तक मूल रूप से उन्हें सहन किया जाता था। अधिकांश भाग के लिए बहुत सारी कहानियां जो हम सुनते हैं, उसके बावजूद रोमन सम्राटों में से एक नीरो के अधीन काफी तीव्र उत्पीड़न हुआ था। आप जानते हैं, आपने ईसाइयों को सड़कों पर घसीटे जाने, सिर काटने और अखाड़े में ले जाने के बारे में कुछ कहानियां सुनी हैं, जहां उन्हें जानवरों द्वारा फाड़ दिया गया था। सचमुच पहली शताब्दी में यह काफी दुर्लभ था। छिटपुट रूप से और ऐसा कभी कभार हुआ, अधिकांश समय रोम ईसाइयों को अकेला छोड़ने में संतुष्ट था, खासकर जब तक उन्हें पुराने नियम के यहूदी धर्म की तरह सिर्फ एक अन्य यहूदी धर्म के रूप में देखा जाता था। समस्याएं तब शुरू हुईं जब वे उससे अलग होने लगे या उन्हें संदेह होने लगा कि वे उससे अलग हैं, और जब उन्होंने ऐसा किया और ऐसी बातें कही जो विध्वंसक लगीं और रोमन शासन पर सवाल खड़ा कर दिया। लेकिन अधिकांश भाग के लिए हमें जो चीजें करने की जरूरत है उनमें से एक यह है कि जब हम पहली शताब्दी के ईसाई धर्म के बारे में सोचते हैं, तो क्या हमारे पास यह छवि होती है कि रोम के हर शहर में सैनिक मार्च कर रहे थे और वे घर घर जा रहे थे और ईसाइयों को सड़क पर घसीटना और उन्हें मौत के घाट उतारना। यह बिल्कुल सच नहीं है। अधिकांश उत्पीड़न, जैसा कि हम देखेंगे, अधिकांश उत्पीड़न रोम से नहीं आया था। यह स्थानीय स्तर से आया था और यह अधिक छिटपुट था, कुछ स्थानों पर हो रहा था। अन्य स्थानों पर फिर से रोम को कोई परवाह नहीं थी। सम्राट को कम से कम पहली शताब्दी में अधिकांश भाग के लिए ईसाइयों की ज्यादा परवाह नहीं थी और उन्हें अकेला छोड़ दिया। फिर बहुत सारी समस्याएं रोमन साम्राज्य से नहीं बल्कि ईसाइयों के साथ स्थानीय स्तर से आईं। इसलिए अधिकांश भाग के लिए रोमन शासन के तहत ईसाइयों के लिए जीवन अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण रहा होगा, लेकिन फिर भी बहुत सारी समस्याएं स्थानीय स्तर पर आईं और छिटपुट रूप से उससे भी अधिक तीव्र थीं। लेकिन दूसरी बात यह है कि रोमन साम्राज्य के प्रसार के साथ यहूदी और ईसाई दोनों और भगवान के लोगों के रूप में यहूदी लंबे समय से यह सवाल पूछ रहे थे, और वह यह है कि रोमन प्रभुत्व के तहत भगवान के लोगों के रूप में रहने का क्या मतलब है। हम किस हद तक रोमन शासन को समायोजित कर सकते हैं और फिर भी यीशु मसीह के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रख सकते हैं। हम किस हद तक रोम और सीजर के प्रति निष्ठा दे सकते हैं फिर भी परमेश्वर के लोगों के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रख सकते हैं। और हम देखेंगे कि यह मुद्दा कई नए नियम दस्तावेजों में भी उठेगा। रोमन शासन के तहत बुतपरस्त माहौल में भगवान के लोग होने का क्या मतलब है, जहां हम मानते हैं कि यीशु भगवान है लेकिन सीजर सिंहासन पर है, इसका क्या मतलब है? परमेश्वर के लोग उस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं? मैं किस हद तक ईश्वर के लोगों के रूप में, ईसाइयों के रूप में अपनी पहचान बनाए रखता हूँ फिर भी रोमन शासन के तहत अपना जीवन व्यतीत करता हूँ? तो यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न होगा जो नए नियम में कई बार आएगा। ठीक है, फिर भी अभी और भी बहुत कुछ कहा जा सकता है और उसे स्पष्ट रूप से बहुत अधिक विस्तार से भरा जा सकता है, लेकिन मैंने बहुत व्यापक ब्रशस्ट्रोक के साथ राजनीतिक रूप से यह बताने की कोशिश की है कि क्या चल रहा था। नया करार। एक चीज जो आप देख सकते हैं वह मूलतः यह है कि परमेश्वर के लोगों ने विदेशी उत्पीड़न के अधीन जीवन का अनुभव किया। परमेश्वर के लोग जिनके लिए परमेश्वर ने वादा किया था कि दाऊद का एक पुत्र उस पर शासन करेगा, कि परमेश्वर उन्हें एक राज्य देगा, कि परमेश्वर उनका राजा होगा और राजा सिंहासन पर बैठेगा, परमेश्वर उनके साथ एक वाचा बांधेगा। अब उन्होंने पाया कि सिंहासन पर कोई राजा नहीं है और दाऊद का कोई पुत्र नहीं है। पुराने नियम में दाऊद से किया गया वादा दाऊद के साथ की गई वाचा याद है। सिंहासन पर दाऊद का कोई पुत्र नहीं है। मंदिर अब नष्ट हो चुका है और लूट लिया गया है। वे जहां भी देखते हैं वहां विदेशी प्रभाव है, और तो यह भगवान के वादों के बारे में क्या कहता है? यह परमेश्वर के लोगों के रूप में हमारे बारे में क्या कहता है? और इसलिए वे लगातार पहचान के सवाल से जूझ रहे हैं और विदेशी शासन, उत्पीड़न और बुतपरस्त प्रभाव के संदर्भ में अपना जीवन जी रहे हैं। जब ऐसा लगता है कि परमेश्वर के वादे पूरे नहीं हो रहे हैं, तो परमेश्वर के लोगों के रूप में जीने का क्या मतलब है? वास्तव में पहली सदी की वर्तमान राजनीतिक स्थिति से परमेश्वर के वादे खंडित प्रतीत होते हैं, और इसलिए वे सोच रहे हैं कि भगवान के वादे कहाँ हैं और इस तरह की स्थिति में भगवान के लोगों के रहने का क्या मतलब है। कोई और सवाल? ब्लैकबोर्ड के किस अनुभाग में नोट्स और पाठ्यक्रम सामग्री के अंतर्गत पाए जाते हैं? मैंने उन्हें कल रात पहना था और कुछ घटित हुआ। मुझे यकीन नहीं है क्या नोट दिखाई नहीं दिए। मुझे यकीन नहीं है कि वे वहां कैसे नहीं पहुंचे, लेकिन मैंने कक्षा में आने से पहले ही जांच की थी और दोनों और नोट्स सामग्री के तहत ब्लैकबोर्ड पर हैं।